प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण 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 भगवान गीता में आता है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर विदृष्टोऽन्तस्त्वनयो चतुर्दशी जी ना सतो विद्यते भाव असल वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है और सब वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। ये आधा श्लोक बहुत ही महत्व का है, सार चीज है। देखा जाए तो शास्त्रों में जितनी व्याख्या है, जितना विवेचन है, जितना उपदेश है, सोलह अक्षर आ जाते सब। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इतनी ऐसी बड़ी भारी व्याख्या है। क्या चीज हुई? ना सतो विद्य असत नाम जो जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, जो बदलता रहता है एकदम, इस बदलते रहने वाले की सत्ता नहीं है। ये रहेगा ऐसी बात नहीं है। और जो सब वस्तु है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। अर्थ क्या हो गया? है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो परिगत देखिए है सो दिखेगा। ये तात्पर्य हुआ। थोड़ा ध्यान दें भाई बहन, बड़ा अच्छा रहेगा। हम जो देखते हैं, ये देखने वाला तो होता है सत और देखने वाली वस्तु होती है असत। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। एक चेतन है, एक जड़ है। देखने वाली, ज्ञान में आने वाली, मन बुद्धि के अंतकरण आने वाली, इनको जो जानते हैं, ये जानने वाली, जानने में आने वाली वस्तु सब जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, रहने वाली नहीं है। और जो जानने वाला है वो सत है, वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, अपरिवर्तनीय, वो बदलता नहीं, वो जो का त्यों रहता है। तो जो ज्ञान की महिमा आई है चौदहवें अध्याय के आरंभ में ही महिमा आई है, तो स्वर्गे बिनो बुझाएंगे प्रलय नभ्यसंती च। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो महासर्ग में ही पैदा नहीं होता, महाप्रलय में पैदा नहीं होती। मानो सृष्टि सबकी सब पैदा हो जाए तो भी उसके कोई विक्षेप नहीं होता, सबकी सब लय हो जाए तो कोई असर नहीं पड़ता। तो सर्वस्तु ऐसी है सत्य जिसका नाश नहीं होता, और असत वो वस्तु है जिसकी वास्तव सत्ता है ही नहीं, रह ही नहीं सकता। तो हम लोगों की ये शरीर और संसार जितना दिखता है, जो कुछ पदार्थ देखने में सुनने में जानने में आता है, इसीलिए कहा है कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, जितना विचार करते हैं ये मोह मूल, मान ये जो मूल मोह है, मूर्ता है, अज्ञान है, मूर्खता है, इसकी सत्ता है ही नहीं। और जो देखने वाला वो परमात्मा सब में परिपूर्ण परमात्मा है, सब में है। मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना येन सर्वम इदम ततम, जिससे संसार व्याप्त संसार में परिपूर्ण है, उसका कभी विनाश हुआ नहीं, विनाश होगा नहीं, कभी है ही नहीं विनाश, कभी विनाश उसका हो सकता ही नहीं, ऐसी चीज है वो। तो हम लोगों के ये शरीर है, पदार्थ है, व्यक्तियां है, वस्तुआ है, ये सब की सब बदलने वाली है, ये रहने वाली नहीं है। ये मोह के कारण से सच्ची दिखती है, सच्ची नहीं है। इसका अनुभव करो तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये शहर बसे है ना, बीकानेर शहर बसा है, तो बीकानेर बीके जी ने, राव बीके जी ने आकर के बसाया। ये जोधपुर के है बस, वहां के भाई हैं। तो बीका जी और एक सज्जन उनके मित्र आपस में बात कर रहे थे, तो किसी ने ताना मार दिया कि इतनी क्या सलाह करते हो, कोई देश बसाओगे? तो बीके जी ने से हम देश बसाएंगे, वे यहां जंगल था, साफ जंगल, तो यहां करके देखा तो जमीन अच्छी है गई, जहां गढ़ बना है, किला बना है, वहां उन्होंने आकर देखा तो एक मेरा नाम भेड़ बकरी तरने वाला ग्वालिया था, तो उसको पूछा कि तू यहां भेड़ बकरी चराता है तो यहां की जमीन तेरे को कौन सी बढ़िया लगती है? तो उसने एक कैर का बिट बताया, करीर होता है ना कैरिया, जो जिसकी कैरिया लगे, ढालू लगे, टेंटी कैरिया, वो कैर की झांसी एक बताई कि ये जगह है बहुत ही प्रबल है, बड़ी ही शक्तिशाली है। कहते क्या? कि मेरी एक भेड़ थी वो यहां पे आ गई, दूसरी भेड़ों से चली गई, वो यही रह गई अपने बच्चे सहित। रात्रि में सात ना रहे तो ना तो वो मरी, ना बच्चों को मरने दिया, सबसे डरती रही। तो ये जगह ऐसी मजबूत है कि इस जगह सूर बीड़ता है जो वो कोई नाश नहीं कर सकता। तो ठीक है, वहां ही फिर अपने नींव डाले, थावर बीज धर भी हो बीके बीकानेर। तो बैसाख में शुद्ध है तो यह स्थापना करी, तो वहां थाप करके बीके जी बने, बीका अपना नाम तो बीका, और उसका नाम था नेरा, तो बीका नेर, इसका नाम बीका नेर होगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि उस समय में शहर बसा, तो बसते बसते कितना शहर बस गया बड़ा, मेरे देखने में कितने बस गया। ये कोट दरवाजा है, ये मेरे सामने बना है, मैं छोटा था उस समय, ये कोट गेट बना था। अब आगे कितनी बस्ती हो गई, ये दरवाजा बना, कोट दरवाजा कहते हैं इसमें, क्या इसमें आ गई गढ़ है, गढ़ की तरफ जाने वाला दरवाजा कोट गेट, कोट दरवाजा। ये बड़ा इसके बाद कुछ वर्षों के बाद में नागई प्रसारणी बना भवन, तो इस तरह से बना तो उसमें देखो तो कितना परिवर्तन हो गया मेरे देखते देखते। और जब भी का मेरे वर्षा उसको देखा जाए तो बिल्कुल जंगल था जो शहर हो गया। तो ये बदलने वाली सृष्टि है, सब बदलने वाली है, सब बदलने वाली है। आप जो जानते हो उन बातों को सब हो और सुन लेते हो तो सुन लेने में पता लगता है कि ऐसा ऐसा दिखा गया बसा। तो ये आपने बसा जान लिया, तो ये जो जानना है ना, जानना ये जानना है, ये इंद्रियों के द्वारा भी जानना होता है, मन के द्वारा भी जानना होता है, बुद्धि के द्वारा भी जानना होता है और स्वयं से भी जानना होता है। इंद्रियों से जानना है ये ज्ञान ऊंचा नहीं है, थोड़ा ध्यान में थोड़ी सी बातें मैं फिर बहुत सरल बातें बता दूंगा, ये भी बिल्कुल कठिन नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है ना, ये इंद्रियों का ज्ञान छोटा ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं है। जैसे हवाई जहाज ऊपर चलता है तो हम आंखों से देखते हैं तो छोटा सा दिखता है, 40-50 आदमी उसमें बैठ जाए इतना बड़ा भी दिखता है छोटा सा। सूर्योदय होता है तो छोटा सा दिखता है ऐसा, परंतु पृथ्वी मंडल से बड़ा है। तो इंद्रियों का ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, ये जैसा है वैसा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता है। इनकी अपेक्षा मन का ज्ञान तेज है, मन की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान जो निर्णय करती है बुद्धि का ज्ञान तेज है। बुद्धि निश्चय करती है, मन मनन करता है, चिंतन करता है, इस वृत्ति का नाम मन है और अब ऐसा करना है, अब हमें तो अपनी उम्र में भजन ही करना है, ऐसा पक्का विचार कर उम्र पर भजन में लगा दिया जाए, वो निश्चय करने वाली बुद्धि होती है, बुद्धि का तेज है। और बुद्धि का जो मालिक है, जिसको ये कहता है मेरी बुद्धि, मेरी मेरा मन, मेरी इंद्रिया, मेरा शरीर, मेरा कुटुंब, मेरा धन, ऐसे जो बुद्धि को भी मेरा कहता है, बुद्धि को भी मेरा जानता, मेरी बुद्धि है, मेरे मन में मेरी इंद्रिया है, ऐसे जो मालिक बना हुआ है वो है जीवात्मा। तो मालिक का जो ज्ञान है वो ज्ञान पराधीन नहीं है, इंद्रियों का ज्ञान, मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान पराधीन ज्ञान है, ये छोटा ज्ञान है। नेत्रों का ज्ञान हो तो प्रकाश के बिना काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही मन सुन मेरी बातें सुन करके उसका ज्ञान करता है तो मन स्वतंत्र नहीं करता है, बुद्धि के प्रकाश में करता है। और बुद्धि जो निश्चय की वृत्ति है, वो निश्चय की वृत्ति बुद्धि की, वो स्वयं अपने खुद के मालिक के प्रकाश में वो काम करती है, परंतु बुद्धि का मालिक है वो ज्ञान पराधीन नहीं है, वो ज्ञान स्वतंत्र है, स्वाधीन है। कहते कैसे माने हम, कहते मैं हूं, अपना जो होनापन का ज्ञान है ये किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, ये मन का विषय भी नहीं है, बुद्धि का विषय भी नहीं है। अपनी जो सत्ता, अपना होनापन, अपना होनापन है ये पराधीन नहीं है, अपना होनापन। तो होनापन में किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, दूसरे ज्ञान में प्रमाण देना पड़ेगा कि भी ऐसी बात है, क्या पता इस बात का, तो दूसरा गवाह देना पड़ेगा, दूसरी इंद्रियों का, दूसरे व्यक्तियों का, शास्त्रों की गवाह देनी पड़ेगी। और मैं हूं इसमें किसी की गवाह नहीं देनी पड़ेगी, मैं हूं अपना जो हूं है, होनापन है ये नित्य सिद्ध है, मैं क्या हूं ये तो खोज करनी पड़ेगी। इसकी खोज करने वालों को ही ज्ञानी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जो ठीक समझ रहे इस तत्व को वे ज्ञानी महात्मा होते हैं। तो मैं हूं इसमें दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं। कोई पूछे तुम हो कि नहीं हो, कि मैं हूं, इसमें संदेह नहीं है। इसमें संशय अपने होने पर में संदेह नहीं है। इसमें विपरीय नहीं, विपरीत भावना भी नहीं है, असंभावना भी नहीं है, विपरीत भावना भी नहीं है। मैं नहीं हूं ऐसा किसी को अनुभव नहीं है। इंद्रियां नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहम नहीं है, इसका ज्ञान होता है। अपने आप के नहीं का ज्ञान किसी को नहीं है। थोड़ी सी और बुद्धि लगा हुआ आप, जैसे हमारी जागृत अवस्था है, इसमें इंद्रियां मन बुद्धि सब जागते रहते हैं, और स्वप्न अवस्था में भी जागते हैं, पर गाढ़ नींद में जागृत अवस्था नहीं रहती, उसमें ज्ञान नहीं रहता। गहरी नींद आ जाए तो कुछ ज्ञान नहीं रहता है, परंतु जब जगता है तो जागने का भी कहता है कि ऐसी सुख से नींद आई, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसी गहरी नींद आई, कुछ भी पता नहीं था। ये स्मृति होती है, स्मृति होती है, अनुभव जन्य होती है। तो नींद में जिसका अनुभव हुआ है उसकी स्मृति आती है कि कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो स्वयं थे कि नहीं? अगर स्वयं न होता तो कुछ भी पता नहीं इसको कौन कहता? जैसे घर में आदमी रहते हैं तो बाहर से कोई आदमी आवे तो बाहर से पूछता कि हम आदमी है, घर में घर वाले हैं, तो बीच में आवाज आती कि वे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है। तो कोई नहीं कहने वाला भी नहीं है क्या? उसका अर्थ ये नहीं कि मैं नहीं हूं, ये नहीं अर्थ। उसका अर्थ ये है कि मेरे सिवाय घर वाले कोई नहीं है, मैं एक और खोला बैठा हूं, घर वाले यहां नहीं है। तो सबके नहीं कहने वाला तो है ना, नहीं तो नहीं कहने वाला कौन है? इसमें कोई नहीं है इसका अर्थ क्या कि वो बोलने वाला भी नहीं है, ये अर्थ नहीं है। अर्थ यही है कि मैं ही हूं, एक बैठा हूं, और बराबर घर वाले कोई नहीं है। ऐसे ही उस समय में कुछ भी पता नहीं है, तो कुछ भी पता नहीं था तो उसमें आप तो थे ही नहीं, तो सबके अभाव का ज्ञान किसको होता? तो वहां इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के और अहम के अभाव था। वहां मैं पन भी वहां नहीं दिखता था, तो अहंता के भी अभाव का अनुभव है। तो अभाव का भाव का दोनों का अनुभव स्वयं करता है। अभी इंद्रिया भी है, अहम भी है, मन भी है, सब है। इनके होने अपना ज्ञान भी खुद को है और इनके अभाव का ज्ञान भी खुद को है। तो खुद है उसके ज्ञान के लिए दूसरे की जरूरत मैं हूं। इनके इंद्रियों के अभाव का अनुभव, अहंकार के भी अभाव का अनुभव सुषुप्ति में होता है, परंतु अपना अभाव किसी को कभी अभाव का ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि अभाव होता ही नहीं, नित्य भाव है। तो वो जो भाव है उसका नाम है सत, और उसके सिवाय जितना है असत। तो असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत रहता नहीं हरदम, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो सत है। तो सत चेतन वो तो है जो का क्यों है, और ये जड़ बदलता है, सब बदलता है, देश और काल और वस्तु व्यक्ति संयोग वियोग सब बदलते हैं, ये बदलते हैं। इन बदलने वालों को कहते हैं जड़, और न बदलने वाले को कहते हैं चेतन। याद रखो दो बातें, जड़ और चेतन। अब दुनिया में क्या बात है, सामान्य रीति से बिना पढ़े लिखे, साधारण पढ़े लिखे सब जानते हैं चेतन किसका नाम है, कि जिसमें क्रिया होती है वो चेतन, और क्रिया नहीं होती है वो जड़। ये बहुत स्थूल बुद्धि है। हम बोलते हैं, चलते हैं, ऐसा करते हैं, चेतन है, और पत्थर है, ये लकड़ी है, ये जड़ है। तो ये जल चेतन की परिभाषा नहीं है। जड़ ना उसका है, ना अपने को जानता है, ना दूसरे को जानता है, जानना है ही नहीं उसमें, जाननापन नहीं है, वो जड़ होता है। जिसमें जाननापन होता है वो चेतन होता है। अगर क्रिया को चेतन माना जाए तो इंजन है, मोटर है, साइकिल है, ये भी चेतन है। फिर इंजन चलता है, बोलता भी, सीटी देता है और बोलता भी है, और धीमे तेजी की क्रिया भी होती है, तो फिर ये भी चेतन होना चाहिए, पर ये चेतन नहीं है। इसका ड्राइवर चेतन है, उस चेतन के संचालन से चलता है ये। तो उसकी सहायता से एक ड्राइवर 250 गाड़ियां है उनको ले जाता है। देखिए रेलगाड़ी, मालगाड़ी बहुत लंबी, उसको ले जाता है। तो वो केवल चेतन तो ले जा नहीं सकता, और केवल इंजन ले जा नहीं सकता। तो इंजन को संचालन करने वाला चेतन चाहिए। तो जड़ के स्वयं जड़ में शक्ति नहीं है, और स्वयं चेतन में भी तो मनुष्य भी नहीं है। अकेला मनुष्य भी गाड़ी को नहीं खेल सकता, और मनुष्य के बिना वो भी नहीं खेल सकता। ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं बिजली से, और ऐसे आविष्कार है जो बिना भी चेतन के हवाई जहाज चलता है। तो वो भी कोई चलाने वाला है, कहीं बैठा हुआ वो चला रहा है, संतोष कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे तो जो चल रहा है। तो मूल में चेतन के बिना चलता नहीं, वो जो स्वयं है वो चेतन है, जिसको ज्ञान है। अंजन को ज्ञान नहीं है, वायु जल को ज्ञान नहीं है, ज्ञान जैसे ही काम करता है तो ज्ञान नहीं है। तो जाननापन जिसमें है वो चेतन है। तो उस जानने के सिवाय जितना सब जड़ है। हम लोगों की साधारण स्थिति जड़ में है, शरीर में अपना मानते हैं, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है। तो ये ज्ञान ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, जड़ है। और जो ज्ञान जानता है वो चेतन है। तो मैं हूं, इसमें मैंपन तो प्रकृति का अंश है, अहंकार ये वास्तव में बदलने वाला, और हूं ये नहीं बदलने वाला। जैसे मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोगी हूं। तो बालक जवान बूढ़ा बदला, रोगी निरोगी बदला, पर मैं हूं है हूं बदला है क्या? मैं नहीं हूं नहीं बदला है। वो हूं जो सत्ता है वो है जो है, वो होना वाले की सत्ता वो तो है सत्ता चेतन, और उसके सिवाय सब है जड़। अब जड़ है उसकी तरफ विचार करना है। आज एक प्रश्न आया था सुबह कि मन बुद्धि इंद्रियां आदि से भजन किया जाए तो इसमें तो जड़ हो जाएगा, जड़ की आवश्यकता होगी। अब भाई आप जड़ में बैठे हो, संसार सब नाशवान, शरीर नाशवान, उसमें बैठे हो, तो बैठे वालों को इस शरीर का, इंद्रियों का, अंतकरण का सहारा लेना ही पड़ेगा। चाहे संसार का काम करो और चाहे परमार्थ का काम करो, चाहे संसार में आप धंधा करो और चाहे संसार से उठकर अपना कल्याण करो, उस चेतन को प्राप्त करो, चाहे जड़ चीजों धन आदि उपार्जन करो। हमारे पास औजार तो है ही है, कर्म ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेन्द्रिया है, शरीर है, यही हमारे पास है, ये हमारे प्राण है, इनसे काम होता है। तो इनसे काम करो, संसार का तो संसार का होगा, और परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस मुख मोड़ना पड़ेगा। सामग्री यही है हमारे पास, शरीर है, प्राण है, कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है, इसका मुख मोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, ध्यान देकर सुना मेरी बात। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या आपको जरूरत है। वो जो लक्ष्य है, आपके धन की जरूरत है तो धन कमाने की चेष्टा करो। आपके अगर नामगरी की आवश्यकता है तो अपने मान बढ़ाने के लिए अपने नामगरी करो, चाहे ग्रंथ बनाओ, चाहे अपना मकान बनाओ, चाहे स्मारक बना दो। तो वो नाम पड़ा हो तो करो, बड़ाई पाड़ी हो तो काम करो, मिल्स बनना हो तो काम करो, परंतु कल्याण करना हो, उद्धार करना हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति करना हो तो जब ध्यान कीर्तन करो। तो ये तो जड़ है, जड़ जड़ चीजें तो जड़ ही, करने की चीज सब जड़ होती है, मन और बुद्धि अहम तब सब ही सब जड़ है। चित्र क्या होता है? चेतन होता है, ध्येय लक्ष्य परमात्मा है हमारा। तो परमात्मा लक्ष्य बढ़ा करके आप करो तो बिल्कुल संसारी काम करते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर लो। ध्यान दिया आपने, हमारा लक्ष्य धन प्राप्त करना है, मान बढ़ाई प्राप्त करना है, सुख सुविधा प्राप्त करना है, आराम से सुविधा से रहे, खाने पीने सोने बैठने की ठीक जहां पर बस्ती हो जाए, ये करना है। तो ये सब जड़ है, पर परमात्म तत्व को प्राप्त करना है तो ये ध्येय चेतन है। तो ध्येय चेतन होगा चीज तो जड़ी, दोनों में जड़ की प्राप्ति लिए भी जड़ सहारा देना पड़ेगा और चेतन की प्राप्ति के लिए भी जड़ की सहायता देना पड़ेगा। क्योंकि हम जहां बैठे हैं वह जड़ का ही राज्य है सब, और जड़ क्यों लेना हो तो भी जड़ की सहायता से लक्ष्य हमारा होगा वहां हम जाएंगे। जैसे साइकिल पर चढ़े और साइकिल तो चल ही जाए, तो ठीक जानने वाली बात नहीं कहता, सीखने वाले की बात कहता हूं कि वो सीखे चलाए और जाना है। आगाड़ी पेड़ है, मोटा वृक्ष है एक, वो अगर वृक्ष तरफ दृष्टि रखेगा तो वृक्ष ही चकरा देगी वहां। साइकिल है, दृष्टि रखेगी वहां टकरा जाएगी। तो साइकिल चलाने वाले को दृष्टि वृक्ष पर न रख करके वृक्ष से अलग रखे तो ठीक चला जाएगा। तो लक्ष्य जहां होगा उस जाएगा, बाण चलाया जाएगा, गोली चलाई जाएगी तो ठीक जो बंदूक है राइफल है उसकी बंदूक की माखी मिलानी पड़ेगी। बंदूक होती है उसी आगे नाली जिससे गोली छूटती है, उसके ऊपर थोड़ा सा लोहा होता है, उसको माखी कहते हैं, माखी। तो माखी मिला करके उसको ठीक मिलाकर छोड़ जाए, वहां लगेगी वो। तो वो अपना लक्ष्य क्या है, कहाँ भेदन करना है, गोली कहाँ लगानी है, तो लक्ष्य है वो परमात्मा है, बंदूक वही है, लक्ष्य परमात्मा है। तो काम वही है, काम सब यही है, परमात्मा के लिए किया जाएगा वो सब जड़ काम भी चेतन की प्राप्ति करा देगा। ये विलक्षण गीता ने एक बात कही है, गीता में एक विलक्षण बात आई है। क्या आई है? बड़ी विचित्र बात गीता में, ऐसी ऐसी विलक्षण चीजें हैं तो क्या कहूं मैं, मिलती चली जा रही ऐसी बातें हैं। युद्ध रूप की क्रिया, दिन भर गला काटना मनुष्यों का एकदम, ऐसी युद्ध क्रिया भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाए। सुख दुख ये समय कृत्व लाभा लाभ जया जय तो जो युद्धा युद्धस्व नैवम पाप मावसे, पाप नहीं लगेगा। जय पराजय सुख और दुख और जय और सुख दुख और जय पराजय हानि लाभ ये सब समान समझे। मानो सुख में भी वैसी प्रसन्नता, दुख में भी वैसी प्रसन्नता, हानि में भी वैसी प्रसन्नता, लाभ में भी वैसी प्रसन्नता, और जय में वैसी प्रशंसा और पराजय में वैसी प्रशंसा, तो हमारा लक्ष्य परमात्मा हो जाएगा। और हमारे अनुकूलता जय पराजय, जय अच्छी लगती है और हमारी जीत अच्छी लगती है, ऐसे सुख अच्छा लगता है, लाभ अच्छा लगता है, तो लाभ और सुख और जय अच्छा लगता है और दुख और पराजय हानि बुरी लगती है, तो हमारा लक्ष्य जड़ है, चेतन नहीं है, इसलिए हम फंसेंगे। अगर चेतन हमारा लक्ष्य हो तो हम नहीं फंसेंगे। जैसे हम बद्री नारायण जा रहे हैं तो बद्री नारायण में रास्ता है, कहीं चढ़ाई आती है, कहीं उतराई आती है, कहीं जंगल है फूला हुआ, उसमें वृक्षों में फूल फूले हैं और रास्ता बड़ा अच्छा है, हरी 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 वृक्षावली है और ठीक ठीक भवन पवन चल रहा है, ऊपर बदल की छाया आ गई है, आराम से चलते हैं, पसीना सूख जाता है, ऐसी शांति हवा चल रही है, वो चलते रहता वो। और जो सामने चढ़ाई आ गई और वृक्ष नहीं है, दुर्गंध भी आ रही है, मेरे वाला के लगे जानवर टट्टी फिर गए, लगे जानवर टट्टी फिर गए है, वो दुर्गंध भी आ रही है, ऊपर से घाम तप रहा है, तो वो बड़ी कठिनता चलती है वहां। चढ़ाई आ गई, पसीना आ रहा है, दुर्गंधी आ रही है, तो कठिनता का रास्ता आया। और जहां सुगंधी आ रही है, आराम का रास्ता है, छाया है, तो जिसको बद्री नारायण जाना है, वो ना छाया को देखता है, ना घाम को देखता है, ना वो चढ़ाई को देखता है, ना उतराई को देखता है, वो देखता है बद्री नारायण जाना है हमें। तो बद्री नारायण जाने का लक्ष्य होगा, वो बीच में रस्ते में होने वाले सुख और दुख को नहीं देखेगा, क्योंकि ये हमारा ध्येय है ही नहीं। रस्ता सुख का हो या दुख का हो, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। तो सुख आवे तो क्या दुख आवे, हमें सुख दुख भोगना ही नहीं है। ना सुख में राजी होना है, ना दुख में नाराज होना है, हमें यहां थोड़े घर बनाना है। हमारा घर तो वो है बद्री नारायण, वहां जाना है हमें। ऐसे जो कल्याण चाहते हैं वे पुरुष सुख दुख में घबराते नहीं, राजी नहीं होते। सुख दुख है समय कृत्वा, सुख दुख दोनों में समान है, क्यों दोनों रस्ते के हैं। तो सुख दुख रस्ते के बीच में क्या अटके, अपने जो अगाड़ी रस्ते से ढेर वो है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय हो जाएगा तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाएगी। ये ध्यान देना जात, जटिल चीज क्या सही हत्या होती है, मनुष्यों को मारना तो खत्म होती है, पर न्याय से प्राप्त हुआ, आपसे आप प्राप्त हुआ। स्वर्ग द्वार सुगन क्षत्रिय पार्थे लबंधे युद्ध में, ऐसा युद्ध बहुत कम हो मिलता, ऐसा युद्ध मिल गया अर्जुन के लिए, तो भगवान कहते हैं युद्ध करो। वही दुर्योधन के लिए पाप है, क्यों अन्याय पूर्ण करता है वो, ये न्याय पूर्ण करते हैं। इस वास्ते वो युद्ध रूपी क्रिया भी कल्याण करने वाली हो जाती है। अब साधारण क्रिया जब ध्यान की जड़ेगे जवान, जब राम 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 करो तो जवान से करोगे, सेवा करो तो पदार्थों से क्रिया से करोगे, तो ये जड़ता है। ये जड़ता नहीं, जड़ता हो चेतनता हो। लक्ष्य आपका क्या है, धन पाना आपके लक्ष्य है, वर्ष पाना आपका लक्ष्य है, शरीर को आराम देना ये लक्ष्य है, सुख सुविधा से रहना है, खाने पीने की चीज चौकी सोने पाल है, आराम रहे वो रहना है, वो अच्छा लगता है, मुक्ति नहीं हो सकती। वो यहीं अटक जाएगा, रस्तों में बैठेगा, तत्व ज्ञान नहीं हो, मुक्ति नहीं होगी उसकी। और मुक्ति करना हो तो संसार के सुख दुख से ऊंचा उठना होता ही पड़ेगा, ही नियम है। और सुख भी भोगते में मुक्ति हो जाए ये होने का है नहीं। सुख भोगो तो सुख में रहो। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो विषयों में लगा गया तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण इनसे ऊंचा उठ कर परमात्मा की तरफ लगना है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता सहयोग वियोग धनवत्ता निर्धनता बुखार और स्वस्थता बीमारी बुढ़ापा ये जवानी ये जो कुछ है ये तो सब बदलने वाला है। इस बदलने वाले में राजी और नाराज हो गए तो ये जड़ता है, ये है जड़ता। हमारा लक्ष्य तो परमात्मा है, क्योंकि इसमें राजी जड़ता हुई। अरे जड़ता का त्याग करना है, हम जड़ता का सुख दुख नहीं भोगना है, जड़ता का सुख दुख भोगना है। अपना काम है, जैसे हमारी संप्रदाय की बात है तो संप्रदाय की बात हमारी दूसरी संप्रदाय खंड में करना, ये जड़ता है। देखो इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, और द्वैत अद्वैत सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता। इसमें अगर फंस गए, एक एक बुरी लगती है, हमारी संप्रदाय से तुम्हारी समाज ठीक नहीं है, वो कहे तुम्हारी समाज नहीं ठीक है, कोई जड़ता है जयराम जी जरूर बने बैठो, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ये जड़ता है। मानते तो ठीक है, हम सगुण को मानते हैं, तुम निर्गुण को मानते हो, हम निर्गुण को नहीं मानते, हम सगुण को नहीं मानते। तो मान्यता करते हो, लड़ाई करते हो, कल्याण नहीं होगा, ना सगुण वाला का होगा ना निर्गुण वाला का होगा, लड़ाई होगी, खूब अच्छी लड़ो, खंडन बंडन होगा, पुस्तक साफ दोगे, पुस्तक में खंडन बंडन होगा, साफ साफ हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, तो मैं कह रहा लड़ने के लिए तो बातें तीन विरोध की, डर जरूर जमीन का तो दुगई वहां से लड़ोगा, जमीन वहां से लड़ोगा, धन वहां से लड़ो, तो लड़ेंगे तो एक घड़ी चीजें हैं आकर के परमात्मा पर अपनी यहां लड़ाई क्यों करो, यहां कहां छेड़नी लड़ाई, यहां तो अपना अनुष्ठान करो, तुम्हारे सगुण लगे सगुण करो, निर्गुण लगे निर्गुण करो, तुम यहां लड़ाई मत करो, एक जगह एक घर तो डाकानी चाले, कम से कम एक जगह तो लड़ाई छोड़ो, दस परेशान लग जाओ, सगुण के लगे निर्गुण लग जाओ। तो गीता में दोनों बातें बहुत बढ़िया कही है, बहुत ही बढ़िया, विरोध नहीं है, अलग अलग चीज है, ठीक तरह से परमात्मा सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी रवि गम्य थे एक मत्यासदा सम्यक उभर बिंदते फलम। तो इसमें पक्षपात न कर, ये जड़ता है, जो पक्षपात है संप्रदाय तक सिद्धांत की मान्यता तक और अनुसार न करो तो महाराज कल्याण हो जाएगा, स्थूल से स्थूल काम से और एक युद्ध से कल्याण हो जाए, इससे नीचे काम क्या होगा, जिन हत्या ही करना है इससे भी कल्याण हो जाए, पर लक्ष्य आपका कल्याण होगा उद्धार, अटकोगे नहीं, ना संप्रदाय में अटकोगे, ना द्वैत में अद्वैत में किसी में इसमें अटकोगे नहीं तो कल्याण हो जाएगा। और एक पल्ले बंद गया, एक अटक गया, जयराम जी ने तत्व ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, और चाहे मान हो जाएगा, बढ़ाई हो जाएगी, ग्रंथ लिख दोगे संसार में वाह वाह हो जाएगी, परंतु कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। तुम राग द्वेष में फंसे हुए हो, इंद्रिय से इंद्रिय से आर से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय न बसमा गच्छे तो जैसे परिबंध न हो, राग द्वेष चाहे लड़ाई में कर लो, चाहे धन में कर लो, चाहे जमीन के बंटवारे में कर लो, और चाहे द्वेष अद्वैत में कर लो, कोई फर्क नहीं है, बरोबर एक समान लड़ाया है, कोई फर्क नहीं, कुछ समान फर्क नहीं है। तो ये लड़ाई क्यों छेड़े अपना, ठीक है सगुण की बात है सगुण चलो, निर्गुण बात निर्गुण चलो। मैंने ग्रंथ देखे हैं सगुण की उपासना को लगाकर इतनी बढ़िया बताई जाए ज्ञान से ऊपर, और ज्ञान को इतना बताया भक्ति से ऊपर कर, ये सब ग्रंथ में देखे हुए हैं, थोड़े थोड़े देखे हैं थोड़े थोड़े, परंतु इसमें लड़ाई है वो काम कल्याण करने वाली नहीं है। ये सिद्धांत का पक्षपात मत करो, अनुष्ठान करो, उसमें हमारे गलती कहाँ आती है वो पूछो, जो जानकार आदमी हो उनसे पूछो, वे गलतियों का त्याग करो और सही मार्ग को पकड़ो, बिल्कुल कल्याण कल्याण हो जाएगा। कैसे राम राम करके इसमें दबा में जरूरत होगी, इसमें ये जरूरत होगी, ये तो हो जरूरत होगा भाई, ऊपर छत पर चढ़ने के लिए हम नीची सीढ़ियों को क्यों पकड़े, हम तो ऊपर जाने वाले हैं, तो नीची सीढ़ियों के बिना ऊपर जा सकोगे नहीं, कोई कूद कर चला जाए तो किसी के एक ही बात अलग है, हर एक नहीं जा सकता, हर एक सीढ़ी नहीं चलेगा, क्यों चलेगा, उसमें जाने के मार्ग अनेक है, उस मार्ग में मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा, शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, बल का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस वास्ते लक्ष्य हमारा परमात्मा है तो वो जड़ नहीं है, लक्ष्य संसार का है तो ऊंची से ऊंची कथा का व्याख्यान कर रहा है, गीता का व्याख्यान कर रहा है, गीता की कथा कर रहा है, पर लक्ष्य है कि भेंट ज्यादा आ जाए, रुपये आ जाए, लोग वाह वाह कहे, तो कल्याण नहीं होगा। अच्छी बात भगवान की वाणी है, शुभ काम तो शुभ ही होगा, अशुभ होगा नहीं, वो तो शुभ ही होगा, परंतु कल्याण हो जाए ये नहीं होगा, उसका कल्याण का ध्येय नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, वो क्या करे कल्याण को बेचारा, कुत्तों नारियल लो क्या करे, कुत्ते को नारियल मिल जाए क्या करे उसका, उसमें काम की चीज नहीं है। ऐसे जो कल्याण की इच्छा नहीं है वे कल्याण की बात मिल गई तो गीचर को कहीं सत्संग करे क्या करे बेचारा, कोई काम आवे नहीं कुछ भी, नारियल तो श्री फल है, बड़ा मांगलिक है, बढ़िया है, पर कुत्ता क्या करे, ऐसे मुक्ति तो बहुत बढ़िया है, कल्याण है, परंतु जो ऐसा आदमी है उसको मुक्ति क्या होती है, वो जयराम जी जी क्या समझे। इस वास्ते अपना ध्येय अपना लक्ष्य परमात्मा चाहिए, ये मनुष्य शरीर में ही विलक्षणता है और शरीर में देवताओं में विलक्षणता नहीं है, भोग बहुत है परंतु कल्याण की चीज उद्धार करने का मौका केवल मनुष्य शरीर में है। तो कैसे कल्याण करें कि मेरे द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, अब हित करने के लिए तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से, पद से, योग्यता से दूसरों का कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, तो ते प्राप्त मंत्री माम एव सर्वभूति हिते रसा, प्राणी मात्र का हित करना है। कहती है मैं जड़ की लहर चाहता, अरे जड़ चिन्मय हो जाएगा भाई, लक्ष्य उसका क्या है, वंशता क्या बात करेगी, जड़ता ध्येय आपका जड़ता है तो जड़ता है, धन आपका ध्येय है, भोग आपका ध्येय है, संग्रह करना आपका ध्येय है, मान बढ़ाई आपका ध्येय है, शरीर का आराम आपका ध्येय है, तो महाराज कुत्ते में गधे में उसमें कोई फर्क नहीं है, सूर भी आराम चाहता है शरीर का, गधा भी शरीर का आराम चाहता है, वो आराम चाहते हो तो बातें बने ऊंची ऊंची बनाओ, ध्येय आपका क्या है, गीत होता है इसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है। संपा जी ने क्या कहा, बांधन जाते थे संता हम देखते कहाँ है सीता जी, तो वो कहता वो लंका में बैठे अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे गीत उदीत है, वो दिखता मेरे को, तुम जाओ वहां की चेष्टा मिल जाएगी, तो गीत की दृष्टि ऊंची इतनी लंबी होती है, पर श्रेय गरा मांस जहां पड़ा है, कंटेल पड़ा है कि दुर्गंधी आ रही है, फरलांग फरलांग कर मार दुर्गंधी नाक फटे जैसी दृष्टि वहां है, तो ऊंची उड़ान सब उड़कर बैठ बैठ जाएगा वहीं, ऐसे पंडित जी की बातें ऊंची सी ऊंची करे, दार्शनिक बातें ऊंची सी ऊंची करे, पर शरीर का आराम है, कहने का काम नहीं है, रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, मान मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, तो गंदगी मचा पड़ेगा, तो वह उड़ान उसी मिट जाएगी, वो ऊंची दृष्टि कोई काम नहीं आवेगी। अब उस दिन गीत की बहुत है, मन चाहता क्या है कि जहां गंदा ही गंदा है मार, नाक फटे जैसी दुर्गंधी आ रही है, ऐसे ऊंट मरा पड़ा है, वहां पड़ जाएगा, वहां सब उड़ान बंद, ऐसे शास्त्रों की बुद्धि बहुत ऊंची ऊंची उड़ान, मन चाहते धन मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, तो महाराज गिर जाएगा भाई, वो मुक्ति उक्ति नहीं होगी, बातें हो जाएगी यही सारी सही। इस वास्ते हमारे संतों के पुस्तकों में आता है कि राजद्वारे साधरा तीन बात कूजा, साधु संन्यासी राजद्वारे तीन बात के, क्या मीठो के मान को कुछ रहने की चाय, तीन बात वो साधरा साधर एक साधरा, एक मार एक मावड़ी, एक गाय एक गावड़ी, एक साध एक साधरा साधरा, क्योंकि साधर मृत्य है, माँ को तो मावड़ी कह दो, मावड़ी माँ है, एक माँ है एक मावड़ी है, एक गाय है एक गावड़ी है, एक साध है एक साधरा है, तो राज दोबारे साधरा तीन बात गूंजा है, क्या मीठो के मन को कुछ लेने की चाहे, रोड में जा रहा है राजा के पास कहीं बोलियो क्या लगे, वही भगवान कीड़ा कर न्याल कहीं कर, अब न्याल वही एक रुपया मेरे पास है, मीठो भोजन दे रही महाराज पधारो पधारो, जयराम जी मिलने का कुछ नहीं, जयराम जी दिए, तो असली कल्याण चाहेगा इन भोगों में आराम में फंसेगा, मान और बढ़ाई में फंसेगा, और इसमें फंसेगा वो जड़ है, चाहे ऊंची ऊंची बातें करे, चारों वेद का चाहे वेद पाठी हो, षट शास्त्रों का पंडित हो, मन में यही है कि इतनी कथा हुई, इतनी भेंट आ गई, इतनी पूजा हो गई, इतना आदर हो गया, इसमें फंसा है, तो भाई जैसे व्यापार करता है वो व्यापार वो दुकान है, और ये एक दुकान है, अलग अलग दुकान है, ये दुकानदारी है, वास्तव में अपना कल्याण चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, वो तत्व की प्राप्ति के लिए उद्योग है, वो कल्याण करने वाला है, कथा तो एक ही होगी, चाहे कल्याण चाहने वाला कथा करे, ऐसा भेंट चाहने वाला कल्याण करे, चाहे मान बढ़ाई चाहने वाला कल्याण करे, कथा तो एक ही है, पर तीनों का अर्थ अलग अलग है, ध्येय अलग है, लक्ष्य एक अलग है, तो मनुष्य मात्र का ध्येय होना चाहिए कि हमें तत्व की प्राप्ति करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, मुक्ति करना है, ये ध्येय होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, फिर हमारा ठीक है, जिस हमारे विद्वान चले वो सब ठीक सही है, व्यवहार करें वो भी ठीक, परमात्मा करें वो ठीक है, युद्धा युद्ध के लिए युद्ध करने से भी कल्याण हो जाता है, मनता का कल्याण है, तो अर्जुन कल्याण चाहते थे, उसने कहा महाराज मैं कल्याण चाहता हूं, युद्ध से मैं पृथ्वी नहीं चाहता, नहीं प्रपश्याम ममापनुद्याद यथोक मुच्छोषण इंद्रिया नाम अवापि भूमा वसपत मृदम राज्यम सुराना पुरुषाधिपत्यम। अर्जुन बड़े जोर से ढंकेल चोट कर रहा है, मेरे इंद्रियों के सुखाने वाला शोक है, चिंता है, ये यहाँ का राज्य क्या स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो मेरा शोक नष्ट नहीं हो सकता, मेरे युद्ध में क्यों लगा रहे हो आप, इसे नहीं बोलेंगे शोक मुझ शोषण इंद्रिया। अब आप घूमाओ सपत्म रिद्धम धन समृद्ध निष्कंटक बैरी रहित ऐसा राज्य मिल जाए तो मेरे को दुख नहीं मिटेगा, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, देवताओं का राज्य भी नहीं चाहता। तो भगवान कहते देखो मैं राज्य के लिए नहीं करता हूँ, तुम कल्याण चाहते हो वो ध्येय बनाओ परमात्मा का, वो करो काम। इस बात के अंत में कहता तू पंचायती छोड़, धर्म समूर्चेता छोड़ दे, सब धर्मान पर माम एकम शरणम रज, एक मेरी शरण हो जाए, भगवान के शरण हो चाहे युद्ध करो चाहे कुछ भी करो, शरण भगवान के हैं। तो गीता जैसा ग्रंथ मिला गीता अर्जुन को मिला तो हमारा भी भाग्य जग गया, हमारे को मिल गया, करता था युद्ध कितनी मनुष्य बात है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तो प्रसाद में आ चुका, आप कृपा से स्मृति मिल गई। तो जड़ता ये जड़ता पे आप बैठे हो महाराज, जड़ता के बिना कैसे चलोगे, तो ये जड़ता है, ध्येय क्या है आपका, लक्ष्य क्या है आपका, मान बढ़ाई आराम सुख सुविधा शरीर की विश्वविद्यालय में हम साधु बन गए, भिक्षा शिविर से मिले मकान चौखा रहे, आपको पता नहीं है हमारी क्या क्या कामना रहती है, हमारे कामना रहती है कि स्नान करने पत्थर भी ऐसा चाहिए, पत्थर वैसा उसमें स्नान कर लें कपड़ा धो लें और कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी एक चाहिए जिसमें कपड़ा सुख से सुखा दे, नहीं तो वहां मन नहीं लगेगा कि स्नान की सुविधा नहीं, भिक्षा की सुविधा नहीं, या ठीक रहे आराम से रोटी भी नहीं मिलती, क्या कर सब आज कहते मुक्ति चाहे जयराम जी की, मुक्ति हो जाएगी वो टुकड़ा भी है मिले पत्थर दे भाटो के भाटो भगवान क्यों मिलेगा, कपड़ा सुखने नहीं रस्सी है लकड़ी है आराम रहे बैठे ठीक है एकांत रह रहे तू, ये एकांत रहने बहुत बढ़िया चीज है, मैंने देखा है नींद अच्छी आए वहां भाई कोई अलग उलग नहीं नींद आवे तो एकांत नींद बढ़ जाएगी का संसार का चिंतन होगा का भजन होगा। तुम्हारी नींद ठीक होने से परिस्थिति हरेक आपका कल्याण करती है, और आपका ध्येय परमात्मा को मान लो वास्तव में ध्येय नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया सामग्री में कल्याण नहीं करेगी, और लक्ष्य अपना परमात्मा है तो जड़ता में रहते हुए गृहस्थ में रहते हुए ये हमारी बहना माताएं ये परमात्मा प्राप्ति कर सकती है, पर ये मोह माया नहीं है, हमें तो प्राण सेवा करनी है, माता पिता की सेवा उधर इधर पति पुत्र और ससुर सास देवर जेठ नंदा आदि इनको सुख पहुंचाना है, ये चाहे ताड़ना करे चाहे हमारे को दुख दे बहुत अच्छी बात दूना फायदा होगा, आप तो करो सेवा और वे दे आपको दुख तो दुख से पुराने पाप कटेंगे और सेवा से नया पुण्य होगा और परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। भाई बाबा जी बने जंगल में चाहे तो कल्याण होगा, साधु बने तो भी कल्याण होगा, को कल्याण का साधन ठेका लिया है, ये तो अपना भाव है अपनी वृत्ति ठीक करते है तो जड़ता में रहते हुए चिन्मयता को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बनाते हैं पर ध्येय संसार का है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य आपका क्या, जैसे मैंने साइकिल की बात किया लक्ष्य करो तो वहां चले जाए, वही जहां लक्ष्य है वहां गलती हो जाएगी, अब उधर ही वहां गलती होगी, तो आराम चाहते हो सुख चाहते हो प्रशंसा चाहते हो आदर चाहते हो तो कल्याण क्यों बीच में कून कर भगवान क्यों पड़ेंगे तुम्हारे, तुम तो चाहते हो आदर सत्कार आराम तो भगवान बीच में नहीं आएंगे, अगर भगवान के चाहते हो फिर आराम की इच्छा नहीं होगी, इनमें क्या काट गए, आराम हो जाए तो कोई बैर नहीं है, भिक्षा मिल जाए तो कोई बैर नहीं, एकांत में बड़ी अच्छी बात है, एकांत भजन करेंगे नहीं मिलते तो वैसे ही करेंगे। इस बात से मैंने वहां कहा था कि एकांत आदि सुख सुविधा भजन के लिए है, और जो भजन समुदाय में कर सकता है वो एकांत में भजन कर लेगा, और एकांत में भजन करता है समुदाय में आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी, साधन नहीं बनेगा उसका, क्योंकि उसकी आदत एकांत में करने की है। एक अच्छे कवि थे, बूढ़े हो गए, तो अपने बेटे को सिखाया, पोते को सिखाया, तो कई अच्छी अच्छी कविताएं सिखाई, बड़ी अच्छी अच्छी सिखाई। तो सिखाते तो शीतकाल था, तो उसके अपने ऊपर डाली रजाई ओढ़ हुई और ये है सिखा लिया, खूब ही अच्छी तरह सिखाया। फिर बोला सभा में, बोलो कि राली लाओ, राली ओढ़ाओ, क्यों राली इंग्लिश सीखे हो और फिर राली चाहिए, राली में बोल नहीं सके। तो इस तरह से आप अनुकूल रसाई, तो अनुकूल के बिना आप कुछ कर सकोगे नहीं, उनके दास बन जाओ, गुलाम बन जाओगे। आपको गुलाम नहीं बनना है, आप तो ऊंचा उठ रहा है, तो ये सुख दुख दोनों ही गुलाम करने वाले हैं। इंद्रिय से इंद्रिय से आर से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तो यो न बसमागत थे तो यसे परिपंथन हो, ये दोनों तुम्हारे परिपंथी हैं, मार्ग में लुटे रहे हैं। राग द्वेष दोनों ठीक द्वेष ठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो ऊंचा उठता है, इसमें दोनों को ऊंचा उठ जाओ। न अनुकूलता का असर है न प्रतिकूलता का। सुख हर सही दृढ़ दुख बिलखाए, सुख उनका हो जाए दुख में बिलखाए। तो कौन जड सुख हर सही दृढ़ दुख बिलखाए, और दो सम धीर भरे मन भाई, धीर पड़ने से दोनों सवाल है। सुख और दुख है तो दया पाया पैर है, दोनों पगा मैंने कैसे चलोगे, तो सुख दे सुख भी चलने के बाद दुख भी चलने के बाद से, तो दोनों परमात्मा की प्राप्ति के कारण है। दोनों ये साधन सामग्री है, अनुकूल का वो भी साधन सामग्री है, प्रतिकूल का वो भी साधन सामग्री है। उसमें इस बैंक में मत रहना कि ये तो जड़ का है। अरे जड़ का विवेक के लिए है, काम करने के लिए नहीं है। विवेक में जड़ता में उलझो मत, जड़ चीजों में नाशवान में उलझो मत, क्योंकि नाश तो विद्यते भाव, असुभ भाव विद्यते नहीं। असुभ जो चीज है वो विद्यमान कभी रहती ही नहीं, असत नाशवान विद्यमान होती नहीं रहती नहीं, और सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव नहीं विद्यमान, असत का भाव विद्यमान है, विद्यमान है ही नहीं भाव, वो तो नाश नाश हो रहा है। तो नाशवान चीजों का त्याग करो विवेक के द्वारा। मैं काम में देना है वो तो काम में लो भाई, काम तो देना ही पड़ेगा, ऊंचा नीचा सब काम में देना पड़ेगा। ये काम में तो आप बैठे हो जहां पर, तो आपके यहाँ की भाषा काम आवेगी, यहाँ की रहन सहन काम आवेगी, परंतु आपको न रहन सहन में न भाषा आदि में उलझना नहीं है, इनसे ऊंचा उठना है। तो जड़ता का मतलब है कि जड़ता ध्येय न हो, जड़ता लक्ष्य न हो, जड़ता में राजी न हो जाए, इससे ऊंचा उठने इस वास्ते है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो, जप है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, पुस्तक पढ़ो, उपकार करो, दुनिया का सेवा करो, सुख का सुख पहुंचाओ, ये जड़ मैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अपने पास धन है उससे करो, अपने पास मन है बुद्धि है इससे करो, अपने पास कोई पद है कोई अधिकार है हमारा, तो उस अधिकार के द्वारा दूसरों की सुख सुविधा देखो, सबको आराम कैसे पहुंचे। आप धनवान हो, आप बलवान हो, तो आप ज्यादा की सेवा कर सकते हो, जो बलवान नहीं हो थोड़ी की सेवा कर सकते हो। तो यहाँ की सेवा थोड़ी और ज्यादा ये कोई अर्थ नहीं रखती, आप शक्ति के अनुसार करो, उसे बराबर है। एक आदमी के पास बात हो रही थी, कल्पना करो कि बलवान कौन होता है, बलवान भैंसा होता है और बलवान हाथी होता है, घोड़ा होता है बलवान होते हैं। तो एक आदमी ने की बलवान कीड़ी होती, कीड़ी कैसी बात, कीड़ी बलवान है, हाथी के ऊपर तीन हाथी रखते हो तो जरा मुश्किल हो जाएगा, कीड़ी में तीन चार पांच कीड़ी बन जाए जितने एक जो के दानों को कैसे ले जाएगी, तो किसी बल किसी ज्यादा होगा, हाथी चार हाथों को उठा लेगा क्या, चार कीड़ी बने इतने दानों को कीड़ी कैसे ले जाएगी, तो बल कीड़ी का ज्यादा है। ऐसे आप अपनी शक्ति के अनुसार काम करो, आप चार उद्धव कर लेगा। बहन माता को हमारे पास धनवत मैं यूं करूं, धनवत यूं करूं, तुम्हारे पास धन है इतने से तो करो, पहले पहले ज्यादा कर करो क्या है उसे तो करो, अरे है जितना ही करने की जिम्मेवारी है, आपके पास है ही नहीं उसके करने की जिम्मेवारी नहीं, माल पर जगात लगती है, जगात माल पर लगती है, टैक्स इनकम पर लगता है, किसी है नहीं इनकम किया ही नहीं टैक्स क्या लगेगा, तो आपके पास धन है हमारे पास क्या लगेगा। अगर धन से ही परमात्मा प्राप्ति हो तो हमारे देशों को प्राप्ति होगी ही नहीं, पैसा कौन सा लाओ, तो भरा भाव है, उद्देश्य है, लक्ष्य है हमारा परमात्मा। तो धनवान को भी वो तत्व मिलेगा गरीब को भी वही तत्व मिलेगा, जवान को भी मिलेगा, बालक को भी वही मिलेगा, पुरुषों को भी माताओं को भी वही मिलेगा। तब तो हमारा लक्ष्य ध्येय परमात्मा है। भावग्राही दिनार में भगवान भाव देखते हैं, तुम्हारे वो ध्यान नहीं देते, तुम्हारा बल नहीं देखते, तुम्हारी विद्या नहीं देखते, तुम्हारी योग्यता नहीं देखते, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मन राजी किस में होता है, किस बात को देकर आप आराम चाहते हो, सुविधा चाहते हो, सुख चाहते हो, सब तरह से मेरे साथ परमात्म प्राप्ति हो जाए। क्यों प्राप्ति हो जाए, आप चाहते ही नहीं। अगर परमात्म तुम प्राप्ति चाहते हो तो अटकाड़ी करने वाला है ही नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं जो परमात्मा चल रहे में कोई बाधा दे दे। परमात्मा और संत महात्मा और भगवान और शास्त्र और धर्म ये सब सहायक होते हैं। ये ही नहीं, चोर और डाकू वे भी सत्य संत की सेवा करेंगे। दुनिया को लूट लेते हैं, मार पीट करके धन ले जाते हैं, वे डाकू भी उनको पता लग जाएगा संत है, सेवा करेंगे, सहायता करेंगे। ऐसी ऐसी बातें मैंने की सुनी है। जंगल में रहने वाले डाकू धड़ाइत बारोटिया, इसको हम बारोटिया कहते हैं, धड़ाइत कहते हैं मारवाड़े, ऐसे बारोटिया है महाराज, सब कुछ कर ले, मारपीट कर रहे, बंदूक मार मार दे दूसरे को, वे भी साधु संत के सत्य साधु सेवा करेंगे। कोई वस्तु चीज बना दिया तो सत्य हृदय में चलने वाले का सबका सब आदर करेंगे। ये दुनिया आप कहते हो खराब, दुनिया खराब नहीं है, दुनिया बहुत विलक्षण है। हमारे में जितने अवगुण होते हैं वो अवगुण को तो कम देखती है दुनिया, और हमारे गुण होता है बहुत ज्यादा देखते हैं। भलाई जो अधिक देखते हैं, बुराई नहीं देखते। किसी साधु में अच्छी गुण हो तो साधु में महात्मा जी बीच में बुराई तो नहीं देखती। तो दुनिया में हमारे अच्छाई का असर ज्यादा पड़ता है, बुराई है जो बुराई देखने वालों को बुराई दिखेगी, वो तो संतों में असम सब जगह बुराई दिखेगी, परंतु साधारण जनता है वो दूसरे का अवगुण कम देखती है और गुण ज्यादा देखती है, गुण का आदर करता है, उसी का हमें बात नहीं है। फिर वास्ते भगवान है सब जगह, इस रूप साक्षात भगवान का स्वरूप है, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। वो प्यासा है तो जल पिलाओगे, जल है तो जल क्या है, रोटी खिलाओ, आराम पिलाओ, बैठो भाई छाया में बैठो आराम से, ऐसे आपके पास हो। इन जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है। खेत में बाजरा बोते तो बाजरा पैदा होता है, जोतना पर जोतना पैदा होता है। पर ये ऐसी बात है, संसार का सुख नहीं, ऐसे पारमार्थिक सुख मिलता है। दाना तो है व्यवहारिक सुख, और इस पैदा होता है पारमार्थिक पत्र। निष्काम भाव से सेवा करो, जिस क्षेत्र में रहो, जिस घर में रहो, जिस समुदाय में रहो, जिस पद में रहो, उसके द्वारा सबको सुख कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, ऐसा अगर भाव रखो तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई बाधा दे ही नहीं सकता। और मेरा मतलब सिद्ध हो, ये तो कुत्तों में ही होता है, गधों में ही होता है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना नहीं, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मंत्री नाम एवं सर्वभूत हिते रता। प्राण मात्र का हित, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। दूसरा हित हो, जहां जिस क्षेत्र में रहो वहां ही सबका हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, अपनी शक्ति के अनुसार, धन धन के अनुसार, पद है तो पद के अनुसार, आपकी योग्यता है योग्यता अनुसार, विद्या तो विद्या के अनुसार, आपकी जो चीज है उसके द्वारा दूसरों का हित करो, आपका परम हित होगा। निष्काम भाव से कामना करो तो उसमें बिक्री हो जाएगी। आप सुख चाहोगे, आराम चाहोगे, मान बढ़ाई में, तो उसमें बिक्री हो जाएगी भाई। और ये न चाह करके उसे ऊपर जो कल्याण हो जाएगा, ये बात। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कोई भूल हो गई तो पूछो सुधार करना, गलती हो गई तो पूछो, शंका हो तो पूछो।